नमस्ते, मैं आरव हूँ। नाइन आर ट्री के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा। मैग्रॉ हिल्स इंटरेस्ट एमोर्टाइजेशन टेबल्स थर्ड एडिशन जैक सी एस्टिस की एक व्यावहारिक वित्तीय संदर्भ पुस्तक है। इसका उद्देश्य पाठक को ऋण की मासिक किस्त, ब्याज लागत, मूलधन में कमी और अलग अलग भुगतान विकल्पों का शीघ्र अनुमान लगाने में सहायता देना है। यह सिद्धांत प्रधान व्यक्तिगत वित्त की पुस्तक नहीं, बल्कि पूर्व निर्धारित तालिकाओं, उदाहरणों, निर्देशों और शब्दावली पर आधारित उपयोगी गाइड है। इसमें 3 से 18% तक की ब्याज दरों तथा $9,00,000 तक के ऋणों के लिए तालिकाएं दी गई हैं। पुस्तक मुख्यतः गृह ऋण के संदर्भ में उपयोगी है, लेकिन कार ऋण, निवेश संबंधी उधारी और अन्य किस्त आधारित ऋणों को समझने में भी सहायक हो सकती है। मानक मासिक ऋणों के साथ समायोज्य दर वाले ऋण, द्विसाप्ताहिक भुगतान, बैलून भुगतान और अतिरिक्त पूर्व भुगतान के प्रभाव भी इसके दायरे में आते हैं। इसका केंद्रीय लाभ गणना को तेज और दृश्य रूप में समझने योग्य बनाना है। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले मासिक किस्त को ब्याज दर, अवधि और ऋण राशि से जोड़ने वाली तालिकाएं। पुस्तक का आधार एमोर्टाइजेशन टेबल है, जो किसी ऋण की राशि, ब्याज दर और अवधि को एक अनुमानित मासिक मूलधन और ब्याज भुगतान से जोड़ती है। ऋण लेते समय केवल उधार ली गई रकम देखना पर्याप्त नहीं होता, क्योंकि समान राशि पर अलग ब्याज दर या अलग अवधि मासिक नकद प्रवाह को बहुत बदल सकती है। तालिका आधारित पद्धति पाठक को हर बार जटिल सूत्र लगाने के बजाय उपयुक्त दर और अवधि खोजकर भुगतान का त्वरित अनुमान देती है। यह सुविधा विशेष रूप से तब उपयोगी होती है जब खरीदार कई संपत्ति मूल्यों, अग्रिम भुगतान राशियों या ऋण अवधियों की तुलना कर रहा हो। पुस्तक छोटे ऋणों के लिए भी मासिक भुगतान तालिकाएं प्रस्तुत करती है, इसलिए इसका उपयोग केवल बड़े मॉर्टगेज तक सीमित नहीं रहता। फिर भी तालिका को अंतिम ऋण प्रस्ताव नहीं मानना चाहिए। वास्तविक किस्त में कर, बीमा, ऋणदाता शुल्क, निजी मॉर्टगेज बीमा या अन्य अनुबंधीय लागतें जुड़ सकती हैं। इस सीमा के बावजूद मूलधन और ब्याज वाले हिस्से को अलग करके देखना उधारी के निर्णय को अधिक स्पष्ट बनाता है। पुस्तक का मूल्य इसी त्वरित तुलना में है, न कि व्यक्तिगत वित्तीय सलाह के विकल्प के रूप में। दूसरा, एमोर्टाइजेशन अनुसूची से मूलधन, ब्याज और शेष बकाया का बदलता अनुपात। एमोर्टाइजेशन का महत्वपूर्ण पहलू यह है कि स्थिर मासिक भुगतान होने पर भी हर भुगतान के भीतर ब्याज और मूलधन का अनुपात स्थिर नहीं रहता। ऋण के शुरुआती चरण में बकाया राशि अधिक होने से ब्याज का भाग बड़ा रहता है और मूलधन अपेक्षाकृत धीरे घटता है। समय के साथ बकाया कम होता है, इसलिए समान भुगतान का बड़ा भाग मूलधन चुकाने में लगने लगता है। पुस्तक की तालिकाएं और उदाहरण इस परिवर्तन को देखने का व्यावहारिक माध्यम देते हैं। इससे पाठक केवल किस्त वहन कर पाने के प्रश्न से आगे बढ़कर यह समझ सकता है कि किसी निश्चित समय पर उसका बकाया कितना रह सकता है, कितना ब्याज अदा हो चुका होगा और संपत्ति में उसकी इक्विटी किस गति से बढ़ेगी। यह जानकारी पुनर्वित्त, बिक्री या नए ऋण की योजना बनाते समय उपयोगी है। पुस्तक मॉडल स्थितियों और शेष राशि की गणना के निर्देशों के माध्यम से इस उपयोग को समर्थन देती है। इसकी सीमा यह है कि तालिकाएं सामान्यकृत संदर्भ हैं, जबकि वास्तविक ऋण की तारीख, चक्रवृद्धि विधि और विशेष शर्तें परिणाम बदल सकती हैं। फिर भी ऋण को केवल मासिक खर्च नहीं, समय के साथ बदलती देनदारी के रूप में देखने की दृष्टि इसका प्रमुख योगदान है। तीसरा, समायोज्य दर वाले ऋण में संभावित भुगतान परिवर्तन को समझना। पुस्तक मानक स्थिर दर वाले ऋणों के अलावा एडजस्टेबल रेट मॉर्टगेज अर्थात ARM पर भी ध्यान देती है। स्थिर दर ऋण में मूल ब्याज दर सामान्यतः पूरी अवधि में एक जैसी रहती है, इसलिए भुगतान अनुमान अपेक्षाकृत सरल होता है। इसके विपरीत ARM में दर समय समय पर बदल सकती है। ऐसी स्थिति में शुरुआती कम किस्त को दीर्घकालीन लागत का पूरा संकेत मान लेना जोखिमपूर्ण हो सकता है। पुस्तक के उदाहरण और तालिकाएं पाठक को मूलधन और ब्याज के संबंध को समझने तथा अलग दरों पर भुगतान की तुलना करने का आधार देती हैं। इसका व्यावहारिक अर्थ यह है कि उधारकर्ता अपनी वर्तमान आय के साथ संभावित बढ़ी हुई किस्त के लिए भी नकद प्रवाह का आकलन कर सकता है। यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए प्रासंगिक है जो कम प्रारंभिक दर देखकर ऋण विकल्प चुन रहे हैं। हालांकि पुस्तक ARM अनुबंध की हर आधुनिक शर्त जैसे सूचकांक, मार्जिन, समायोजन सीमा या ऋणदाता के विशिष्ट नियमों का विकल्प नहीं है। पाठक को वास्तविक प्रस्ताव के दस्तावेज अलग से पढ़ने होंगे। पुस्तक की उपयोगिता यह है कि वह दर परिवर्तन के वित्तीय परिणाम को संख्यात्मक रूप में देखने की आदत विकसित करती है, जिससे तुलना केवल प्रचारित शुरुआती भुगतान पर आधारित नहीं रहती। चौथा, द्विसाप्ताहिक और बैलून भुगतान वाले ऋणों के लाभ तथा सावधानियां। ऋण संरचना का चुनाव केवल मासिक किस्त तक सीमित नहीं है। पुस्तक, द्विसाप्ताहिक भुगतान और बैलून भुगतान वाले ऋणों के फायदे और कमियों को अलग विषयों के रूप में शामिल करती है। द्विसाप्ताहिक व्यवस्था में सामान्यतः वर्ष के दौरान अधिक बार भुगतान होता है, जिससे अतिरिक्त मूलधन चुकता हो सकता है और ब्याज लागत या ऋण अवधि घटने की संभावना बनती है। लेकिन लाभ तभी वास्तविक होगा जब भुगतान संरचना, सेवा शुल्क और ऋणदाता की शर्तें ध्यान से देखी जाएं। दूसरी ओर बैलून ऋण शुरुआती अवधि में कम या अलग प्रकार के भुगतान के बाद अंत में बड़ी शेष राशि मांग सकता है, इसलिए कम प्रारंभिक भुगतान को किफायती होने का प्रमाण नहीं समझना चाहिए। उधारकर्ता को यह पता होना चाहिए कि अंतिम बड़ी देनदारी चुकाने, संपत्ति बेचने या पुनर्वित्त कराने की उसकी वास्तविक क्षमता क्या है। पुस्तक का संदर्भ ढांचा इन विकल्पों को तुलना योग्य बनाता है, क्योंकि वह भुगतान, बकाया और अवधि के संबंध पर जोर देता है। यह दृष्टि रियल एस्टेट पेशेवरों और खरीदारों दोनों के लिए उपयोगी है। फिर भी किसी विकल्प का चुनाव करने से पहले अनुबंध, शुल्क, पूर्व भुगतान नियम और व्यक्तिगत आय की स्थिरता की स्वतंत्र जांच आवश्यक रहती है। अंत में नियमित अतिरिक्त भुगतान से ब्याज बचत और ऋण अवधि में कमी पुस्तक का एक व्यावहारिक विषय नियमित अतिरिक्त भुगतान का असर है। जब उधारकर्ता निर्धारित किस्त से अधिक राशि देता है और वह अतिरिक्त भाग सीधे मूलधन में लगाया जाता है, तो भविष्य के ब्याज की गणना के लिए बकाया राशि कम हो सकती है। परिणाम स्वरूप कुल ब्याज घट सकता है और ऋण अपेक्षा से पहले समाप्त हो सकता है। तालिकाओं के माध्यम से यह देखना संभव होता है कि अलग अलग चरणों में बचा बकाया कितना है और अतिरिक्त भुगतान किस प्रकार ऋण की दिशा बदल सकता है। यह विचार इक्विटी वृद्धि से भी जुड़ता है, क्योंकि मूलधन तेजी से घटने पर संपत्ति में स्वामित्व का हिस्सा बढ़ता है। परंतु पुस्तक के उपयोग में एक महत्वपूर्ण सावधानी निहित है। हर ऋण में अतिरिक्त भुगतान का व्यवहार समान नहीं होता। कुछ अनुबंधों में पूर्व भुगतान शुल्क हो सकता है, कुछ में अतिरिक्त रकम अगली किस्त के अग्रिम रूप में दर्ज हो सकती है, और कुछ स्थितियों में उच्च ब्याज वाले अन्य कर्ज को चुकाना अधिक उचित हो सकता है। इसलिए तालिका संभावित लाभ दिखाती है, निर्णय का पूर्ण विकल्प नहीं बनती। पुस्तक का ठोस योगदान यह है कि वह अतिरिक्त भुगतान को अस्पष्ट अच्छी आदत के बजाय ब्याज, बकाया और समय के स्पष्ट संबंध के रूप में प्रस्तुत करती है। निष्कर्ष में मैग्रो हिल्स इंटरेस्ट एमोर्टाइजेशन टेबल्स 3rd edition उन गृह खरीदारों, उधारकर्ताओं, रियल एस्टेट एजेंटों और ऋण पेशेवरों के लिए सबसे उपयोगी है, जिन्हें ऋण संबंधी प्रश्नों का त्वरित संख्यात्मक उत्तर चाहिए। यह विशेष रूप से तब सहायक है जब किसी व्यक्ति को कई ऋण राशियों, ब्याज दरों और अवधियों के बीच अंतर समझना हो, या बिक्री, खरीद, पुनर्वित्त और अतिरिक्त भुगतान के संभावित प्रभाव का आरंभिक आकलन करना हो। छात्र और निवेशक भी इससे मूलधन, ब्याज और शेष बकाया के संबंध को व्यावहारिक ढंग से देख सकते हैं। पुस्तक की प्रमुख सीमा भी स्पष्ट है। यह वित्तीय साक्षरता का विस्तृत पाठ्यक्रम, कर सलाह या व्यक्तिगत ऋण अनुशंसा नहीं देती। जो पाठक ब्याज की गणित, क्रेडिट जोखिम या मॉर्गेज अनुबंधों का गहरा सैद्धांतिक अध्ययन चाहते हैं, उन्हें इसे अन्य स्रोतों के साथ पढ़ना होगा। फिर भी अपनी श्रेणी में इसकी अलग पहचान व्यापक, तुरंत देखने योग्य तालिकाओं और विविध ऋण संरचनाओं के एक ही संदर्भ में संयोजन से बनती है। अनेक आधुनिक डिजिटल कैलकुलेटर तुरंत परिणाम देते हैं, पर यह पुस्तक उपयोगकर्ता को भुगतान के पीछे की संरचना, शेष बकाया और समय के प्रभाव को साथ साथ देखने देती है। इसी कारण यह त्वरित संदर्भ और बातचीत में उपयोगी तुलना उपकरण के रूप में प्रासंगिक है। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं जैक सी एस्टिस, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए Amazon लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।